أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. حضرت آدم علی نبینا و آلہ و علیہ السلام اور حضرت حوا سلام اللہ علیہ کے بارے میں بات چل رہی ہے، اور حابیل اور قابیل کا قصہ آپ کے سامنے بیان کیا، اور یہ دیکھا ہم نے کہ کس طرح حابیل اور قابیل کے درمیان اختلاف پیدا ہوا، یا اختلاف شادی کی وجہ سے تھا یا اختلاف وصایت کی وجہ سے تھا. جو قول علماء نے انتخاب کیا ہے وہ یہی ہے کہ جو اصل اختلاف تھا حابیل اور قابیل کا، وہ حضرت آدم علیہ السلام کے بعد جانشینی کے مسئلے کی وجہ سے تھا. کس کو وصی بننا ہے، طے یہ پایا تھا خداوند متعال کی جانب سے کہ حضرت حابیل علیہ السلام کو وسیع بننا ہے، لیکن یہاں پر قابیل نے اختلاف کیا، مخالفت کی، اور نتیجے میں پھر قربانی کا واقعہ پیش آیا، اور قربانی بھی جو ہے وہ قابیل کی رد کی گئی اور حابیل کی قبول ہوئی، اور اس کے بعد جو ہے وہ ایک کینہ اور حسد قابیل کے دل میں پیدا ہوا، اور پھر کس طرح شیطان نے قابیل کو ولگلایا، وسوسہ کیا حابیل کے خلاف، اور نتیجے میں حابیل قتل ہو گئے. صحیح. اب مزید ہم دیکھتے ہیں حابیل کے بارے میں، ٹھیک ہے، کہ اب ہوا کیا، قتل کے بعد قابیل کے ساتھ کیا کیا شیطان نے، اب ہمیں یہ دیکھنا ہے. پہلا نقطہ یہاں پر یہ کہ یہ ہم اس بات پر باور کریں اور جان لیں کہ قابیل در حقیقت خدا کے مقابلے میں کھڑا ہوا تھا. جس طرح اس نے بے ادبی دکھائی تھی حضرت آدم علیہ السلام کے سامنے، اور جو اس نے باتیں کی تھی، قرآن میں بھی وہ باتیں اس کی ذکر کی گئی ہیں، ٹھیک ہے، یہ سب کچھ دیکھتے ہوئے ہمیں یہی معلوم ہوتا ہے کہ وہ خدا کے سامنے، خدا کے مقابلے میں کھڑا ہوا تھا. البتہ یہ جو خدا کے مقابلے میں کھڑا ہونا تھا، خدا کی مخالفت کرنا تھی، اس کی ظاہری شکل ہمیں کس صورت میں ملتی ہے؟ اس قتل کی صورت میں. صحیح. خدا کی مخالفت کا ظاہری کی جو ظاہری شکل ہے وہ ہمیں حابیل کے قتل کی صورت میں ہمیں نظر آتی ہے. البتہ یہاں پر کل ہم نے بات کی تھی شیطان کے بارے میں، اب ایک اور بات ہم شیطان کے بارے میں یہاں یہ کریں گے کہ انالیسس کے اعتبار سے دیکھیں، شیطان کسی حد کا قائل نہیں ہے. اگر مثلا شیطان کا یہ مقصد ہے کہ فلاں انسان سے چوری میں کروا لوں، اس نے چوری کر لی، اور اب ہم یہ سمجھے کہ شیطان اپنے مقصد میں کامیاب ہو چکا ہے، اب شیطان کو اس انسان سے کام لینا، کوئی لینا دینا نہیں ہے، نہیں، ایسا نہیں ہے. شیطان اس سے مزید اب کام کروائے گا، کسی حد کا قائل نہیں ہے. وہ انسان کو زمین پر گرا کر رہے گا، وہ انسان کو جہنم کے آخری مرتبے میں بھیج کر رہے گا، ٹھیک، تو وہ کبھی بھی انسان کو نہیں چھوڑتا، کسی حد کا وہ قائل نہیں ہے. اب قتل کے بعد کیا ہوا، قابیل نے جب قتل انجام دیا، اب یہاں پر شیطان نے قابیل کو آتش پرستی کی طرف دعوت دی، آتش دعوت نہیں دی بلکہ اس کو سوگ دیا، اس کو اس طرح ورگلایا اور وسوسہ کیا کہ اب قابیل جو ہے وہ آتش پرستی اور آگ کی پوجا کی طرف جو ہے وہ مائل ہوتے چلے جا رہا ہے. یہاں پر شیطان نے جو بات کہی حابیل کو وہ یہ تھی کہ اے قابیل، حابیل کی قربانی اس وجہ سے قبول ہوئی کیونکہ جو آگ آسمان سے آئی تھی حابیل کی قربانی کو لینے کے لیے، ٹھیک ہے، تم بھی اسی آگ کی پرستش کرو تاکہ تمہاری قربانی قبول کی جائے بعد میں. صحیح ہے. اگر تم اس قربانی کے، قربانی کا مقصد کیا تھا، کل بات ہوئی تھی کہ اس زمانے میں قربانی کیوں پیش کی جاتی تھی، ताकि इंसान खुदा के मजीद करीब हो जाए, खुदा के मजीद नजदीक हो जाए। कुर्ब इल्लाह का एक जरिया उस जमाने में क्या था? कुर्बानी। अब अगरचे यहां पर काबिल जो है वो खुदा की मुखालिफत में था, वो खुदा की मुखालिफत में खड़ा हो गया, लेकिन यहां पर आप देखें शैतान ये वसवसा कर रहा है, ठीक है, कि अगर तुम ये चाहते हो कि बाद में कोई कुर्बानी का अमल तय पाए खुदा की जानिब से और खुदा तुम्हारी कुर्बानी को कबूल करे, तुम उसी आतिश को परस्तिश करो, उसी आतिश की वर्शिप करो, पूजा करो, जिस आतिश से हाबील की कुर्बानी कबूल हुई। अगर तुमने ये काम किया तो अगली दफा तुम्हारी कुर्बानी भी कबूल की जाएगी। अब यहां पर काबिल ने शैतान की बात मानी, उसकी बात में आ गया और नतीजे में काबिल एक आतिश परस्त बन गया और उसने एक इबादतगाह बनाई, बैत तो नार, आग का घर उसने बनाया, आतिश का घर उसने बनाया जहां पर आतिश और आग की पूजा की जाती है। सही। और ये वो टाइम था, ये वो जमाना था तारीख में कि आतिश परस्ती दर मुकाबले खुदा परस्ती बाकायदा रस्मी तौर पर तश्कील पाई। सही है। आतिश परस्ती दर मुकाबले खुदा परस्ती। अब यहां पर मैंने आपको कल कहा था कि आज के सेशन में तरबियती नुकात बहुत ज्यादा हैं और बहुत ही बुनियादी तरबियती नुकात हैं। इसी काबिल और हाबिल के किस्से से एक सबसे पहला तरबियती नुकता नुकता यह है कि देखें, अच्छा इससे पहले मैं एक और तारीखी नुक्ता बता दूं, वो लाश के एतबार से, वो लाश का क्या किया? सही है, काबिल ने, अब काबिल ने देखा कि देखे मौत का तसव्वुर तो उस जमाने में था नहीं, क्योंकि किसी की मौत वाकई नहीं हुई थी, कत्ल किसी का हुआ नहीं था कि इंसान उस लाश का कोई इलाज करे। अब वो क्या कर रहा था काबिल? काबिल लाश को यहां वहां ले जा रहा था, वो कंफ्यूज था, मैं क्या करूं इस लाश के साथ, कभी यहां ले जा रहा है अपने साथ, कभी वहां ले जा रहा है, आदम से छुपाना चाह रहा है, हव्वा सलामुल्ला अलैहा से छुपाना चाह रहा है, वो नहीं चाह रहा कि ये आश्कार हो ये माजरा, अगर जब बाद में आश्कार हो जाता है। तो वो हाबील के जनाजे को यहां वहां जो है वो ले जा रहा है। अब खुदा ने यहां पर एक काम किया, खुदा ने एक कव्वे को भेजा यहां पर, ठीक है, ताकि उसे सिखाए कि दफन किस तरह किया जाए, एक लाश को, एक जनाजे को दफन किस तरह किया जाता है। अब कव्वे को खुदा ने यहां पर भेजा, सूरह मायदा की आयत नंबर 31, बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, फबअथ अल्लाहु गुराबन यबहथु फिल अर्ज़ी लियुरियहु कैफ युवारी सौअत अखी क़ाला या वैलती أعجزت أن أكون مثل هذا الغراب فأواري سوءة أخي فأصبح من النادمين। सही है। अब ये उसी कव्वे का ही किस्सा बयान किया जा रहा है। अब देखिए कव्वे का काम क्या होता है, कव्वे का काम ये होता है, कव्वे का काम ये होता है कि जब कोई गजा एक कव्वे के हाथ लगती है तो उसका काम ये होता है कि वो उस गजा को जमीन के नीचे जो है वो दफन करे, जमीन को वो खोदेगा कुछ हद तक अपने अंदाजे के मुताबिक, उस गजा के मुताबिक, और उस गजा को जमीन में डालेगा और उसके ऊपर मट्टी और खाक को फिर डालेगा। अब ये अमल कव्वे ने काबिल के सामने अंजाम दिया, ठीक। अब काबिल ने जब ये अमल देखा कव्वे का तो वो अपने आप से ये कहने लगा कि मैं क्या इस कव्वे से कम था, क्यों मैंने अपनी अकल को इस्तेमाल नहीं किया, मैं तो उससे ज्यादा बड़ा हूं, मैं तो इंसान हूं, वो तो कव्वा है, अब ये मुझे सिखाएगा कि मैं किस तरह दफन करूं। तो ये अपने उसको अपना गुरूर याद आ गया, अपने तकब्बुर। खूब, ऐसा इत्तफाकन ऐसा होता है, हम सब के साथ भी ऐसा होता है, बाज़ औक़ात एक सादा सी चीज होती है जो हमें समझ में नहीं आती, खुदा की तरफ से कोई सबब बनता है, कोई सबब तश्कील पाता है और उस सबब के जरिए हम उस चीज, सारा सी चीज को फिर समझ जाते हैं और फिर हमें जहन में आता है ओ ये तो ऐसा था, ठीक है। अब यहां पर तरबियती नुक्ता क्या है? यहां पर तरबियती नुक्ता सबसे पहला ये है कि देखें, इस आलम में इस आलम में जो कुछ रूनुमा होता है, जितने भी हवादिस आपके सामने रूनुमा होते हैं, हवादिस से मुराद आपके जहन में ये नहीं है कोई बड़ा हादसा, सही है, हवादिस से मुराद कोई मसलन कोरोना वायरस नहीं है, या मसलन कोई इस तरह के हवादिस जो आपको डेली न्यूज में आपको नजर आते हैं, ये हवादिस फकत मुराद नहीं है, कोई भी हादसा हो, कोई भी हादसा हो, मसलन आप ठीक है किसी अपने घर के नीचे मोहल्ले में खड़े हुए हैं, ठीक है, और रास्ते में से कोई शख्स गुजरता है, ठीक है, अब बहुत सारे लोग गुजर रहे हैं आपसे, उबूर कर रहे हैं आपसे, लेकिन बाज औकात ऐसा होता है कि इंसान मुतवज्जे होता है किसी खास शख्स की जानिब, मुमकिन है वो शख्स उसका जानने वाला ना हो, लेकिन इंसान फिर भी मुतवज्जे होता है। अब मुमकिन है यहां पर ये जो मुतवज्जे हो रहा है, आप जो मुतवज्जे हो रहे हैं उस शख्स की जानिब, अगर आप उसको नहीं भी जानते, मुमकिन है यहां पर कोई पैगाम हो आपके लिए, या इसकी हम एक और मलमूस मिसाल लें, आप गली में जा रहे हैं अपनी फैमिली के साथ, ठीक है, वॉकिंग के लिए, आप देख रहे हैं रास्ते में एक शख्स किसी नाले के अंदर जो है वो गिर जाता है, ठीक है, या पिसल जाता है रोड के ऊपर, गली के ऊपर, सड़क पर, ये हादसा होता है, इसको हम हादसा कहते हैं, इस हादसे में जरूर आपके लिए कोई पैगाम है। हर हादसा, छोटे से छोटा हादसा हो, बड़े से बड़ा हादसा हो, हर हादसे में इंसान के लिए पैगाम है। अगर मैंने और आपने वो पैगाम ले लिया, अल्हम्दुलिल्लाह कहें आप, अगर पैगाम नहीं लिया तो उलमा ये फरमाते हैं कि इस पैगाम ना लेने की सूरत में मेरे और आपके अंदर गफलत के हिजाब में इजाफा होगा, गफलत के हिजाब में इजाफा होगा। बस आलम, ये पूरा आलम इंसान का मुअल्लिम है, आलम इंसान की तालीम के लिए है, इंसान को कोई ना कोई चीज लहजे बे लहजे, लम्हा बे लम्हा कोई ना कोई चीज सिखा रहा है, हर हादसे में कोई इलाही पैगाम मौजूद है। लेकिन अब यहां पर बहुत सारी है, तो चले मैंने आपको एक नतीजा बताया ना कि अगर मैंने और आपने उस हादसे से पैगाम नहीं लिया तो गफलत के हिजाब में जो है वो इजाफा होगा, लेकिन एक और नतीजा भी है, सही है, वो नतीजा आप देखते हैं क्या है। अगर इंसान ने उसी वक्त उस पैगाम को ले लिया, अब यहां पर बहुत इंपॉर्टेंट है, सही है, मैं गुजारिश करूंगा तो उस गौर से सुने, अगर बर वक्त ले लिया, ठीक है, पैगाम को उस हादसे से, तो बहुत अच्छी बात है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन नॉर्मली क्या होता है, यूजुअली क्या होता है, ठीक है, यूजुअली होता यह है कि जब हमें किसी चीज की जरूरत महसूस होती है, इसको हम कहते हैं फारसी में एहसास नियाज, ठीक है, एहसास नियाज, नियाज से मुराद जाहिर सी बात है वो पाकिस्तानी नियाज नहीं है कि इमाम बालगा में जो है वो मजलिस के बाद नियाज मिलती है, वो मुराद नहीं है, बल्कि फारसी से, फारसी नियाज यानी जरूरत, नेसेसिटी, ठीक है, जिसको आप बेसिक नेसेसिटी कहते हैं, बुनियादी जरूरत कहते हैं, सही है, आपको प्यास लग रही है यानी आपको एहसास नियाज बेपानी हो रहा है, ठीक है, पानी की जानिब एहसास नियाज है, सही, इस एहसास नियाज की टर्मिनोलॉजी को मैं यहां इस्तेमाल करूंगा, ठीक है। नॉर्मली होता यह कि इंसान उस वक्त उस पैगाम को लेता है उस हादसे से जब वो मोहताज हो किसी चीज का, जब उसे एहसास नियाज हो, सही है, लेकिन वो लोग जो, वो इंसान जो समझता है, जो बेदार है, जिसका शऊर बेदार है, एक्टिव है, ठीक है, वो आलम से हर वाकये से जो है पैगाम ले रहा है बगैर इस चीज के कि उसको एहसास नियाज हो, इससे पहले कि उसे एहसास जरूरत हो किसी चीज की जानिब, वो पैगामात ले रहा है, मुसलसल पैगामात, इलाही पैगामात ले रहा है उस हादसे से, इसी वजह से, इसी वजह से गौर से सुने, इससे पहले के, अब होना ये चाहिए, यानी ये क्राइटेरिया है, ठीक है, किस चीज का, मैं बताऊंगा आपको, इससे पहले के इंसान जरूरत के और एहसास नियाज के मर्तबे तक पहुंचे, देखिए अभी इस वक्त मैं बैठा हुआ हूं, आप मुझे सुन रहे हैं, मैं आपसे बात कर रहा हूं, इस वक्त मुझे प्यास नहीं लगी, आप भी फर्ज करें कि इस वक्त आपको प्यास नहीं लगी है, ठीक है, या आपको किसी चीज की इस वक्त कोई जरूरत नहीं है। अब यानी मैं और आप इस वक्त मर्तबे जरूरत तक नहीं पहुंचे, जरूरत के लेवल तक इस वक्त नहीं पहुंचे, सही है, हम इस वक्त पहले हैं, जरूरत से इस वक्त पहले के, इस वक्त मरहले के अंदर है। इससे पहले के इंसान जरूरत के मर्तबे तक पहुंच जाए, एहतियाज और मोहताज के मरहले तक पहुंच जाए, जरूरत के आने से पहले मैं और आप वो पैगाम ले लें। अगर जरूरत के ईजाद होने के बाद उस पैगाम को लिया, तो इसका मतलब ये हादसा और इस हादसे के नतीजे में जो पैगाम है, ये एक वार्निंग है, ये एक होशियारी है, ये एक अलार्म है मेरे और आपके लिए। सही, आई होप मैं समझा पा रहा हूं, ठीक है। जरूरत, मुझे अभी किसी चीज की जरूरत नहीं है, ठीक है, और इस वक्त बहुत सारे हादसे इस वक्त रूनुमा हो रहे हैं। मसलन आपकी, आपका बच्चा जो है वो घर में जा रहा है, एकदम पिसल के गिर जाता है कमरे के अंदर, ये पैगाम है यहां पर, यहां पैगाम है, सही है, या कोई और, आप बहुत सारे हादसे, आप छोटे से छोटे हादसे आप तस्वुर कर सकते हैं, सही है। इससे पहले कि मुझे और आपको बेसिक नेसेसिटीज का के एहसास का एहसास हो, एहसास है नियाज हो, ठीक है, मुझे और आपको ये चाहिए कि हम हर हादसे से पैगाम ले लें। अगर पैगाम नहीं लिया और मैं मसलन, अब मैं ये बात अब कर दूं, ठीक है, ये आखिरी बात है इसकी, अब अलार्म वाली बात जहन में हो, ठीक है, कि अगर जरूरत के आने के बाद मैंने वो पैगाम लिया, तो ये अलार्म है। क्या अलार्म है? वो अलार्म अब ये है कि खुदावंद मुताल की सुन्नत ये है, खुदावंद मुताल का कायदा ये है कि जब इंसान को जरूरत का एहसास होता है और वो पैगाम नहीं लेता है या पैगाम सुस्ती से लेता है, तो इंसान को खुदावंद मुताल मुश्किलात में, इम्तिहानात में, इब्तिलाआत में मुब्तला करेगा, ताकि इंसान पैगाम ले उस हादसे से या जितनी भी हवादिस उस इसके इर्द गिर्द रूनुमा हो रहे हैं। समझ रहे हैं इंशाल्लाह इस बात को। अब क्यों मुश्किलात आती हैं इंसान की जिंदगी में, क्यों सख्तियां मुझे और आपको झेलनी पड़ती हैं, क्यों ये कोरोना वायरस के अय्याम हमें देखने पड़ रहे हैं, ये बीमारी सबको लाइक हो रही है, क्यों मुझे और आपको बुखार होता है, क्यों मुझे और आपको खुदा ना खासा कोई डिजीज होती है, कोई ना कोई बॉडीली प्रॉब्लम होती है, या कोई ना कोई इक्तिसादी मसाइल पेश आते हैं हमें और आपको, ठीक है, या आप सोसाइटी में जो दीगर मुश्किलात हैं फैमिलीज के अंदर और नॉन फैमिली जो मसाइल हैं, दीगर जितनी मसाइल सोसाइटीज के अंदर, क्यों ये मुश्किलात मुझे और आपको पेश आती हैं? ये मुश्किलात दर हकीकत खुदावंद मुताल की जानिब से एक वार्निंग है कि भाई, ए इंसान, तूने पैगाम क्यों नहीं लिया? अब तू पैगाम नहीं ले रहा, अब आज मैं तुझे इस मुश्किल में मुब्तला करता हूं, ताकि तू इस मुश्किल के जरिए अब इन हवादिस से, इन मुश्किलात से मेरे उन इलाही पैगामात को ले सके, दरियाफ कर सके, जो तूने पहले दरियाफ नहीं किए। अब मैं और आप खुदा ना खासा मुश्किलात में गिरफ्तार हैं, इन मुश्किलात से अब मुझे उस इलाही पैगाम को अब लेना होगा। बस मुश्किलात का फलसफा क्या है, जिसको हम फलसफा कहते हैं, यानी मुश्किलात का मकसद क्या है? मुश्किलात का मकसद यह है कि इंसान मुख्तलिफ हवादिस से इलाही पैगाम ले। अगर मुख्तलिफ हवादिस से इलाही पैगाम को ना ले, बस खुदा हमें मुश्किलात में मुब्तला करेगा कि अब इन मुश्किलात, ये भी हादसा है ना, मुश्किल में पड़ना भी हादसा है, अब इस संगीन हादसे से, जिस यानी मुश्किलात, इससे हम अब पैगाम लें। अब अगर इससे भी मैंने और आपने पैगाम नहीं लिया, सही है, तो फिर मुमकिन है खुदा फिर और किसी बड़ी में, बड़ी बड़ी मुश्किल में हमें मुब्तला कर दे, सही है। अब मुझे और आपको चाहिए कि इस वक्त देखें, हर फैमिली में कोई ना कोई मुश्किल है, सही, यकीनन किसी ना किसी मुश्किल में मैं और आप गिरफ्तार हैं। हमें चाहिए खुदा की उस सुन्नत पर अमल करें, उस कायदे पर अमल करें और उस मुश्किल से इलाही पैगामात को दरियाफ़ करने की कोशिश करें और उस पर अमल पैदा होने की इंशाअल्लाह कोशिश करें। बस आलम तालीम के लिए है, ये तमाम हवादिस रसूल तकवीनी है, देखिए, दो किस्म के रसूल खुदा ने भेजे हैं। एक वो रसूल जिसको खुदा ने बाकायदा शरीयत दी है, आसमानी किताब दी है, अहकामात दिए हैं, दीन दिया है, सब कुछ, इसको कहते हैं रसूल तशरीई। लेकिन एक है रसूल तकवीनी, जो इस पूरे आलम में, इस पूरे कायनात में जो है वो अपना काम अंजाम दे रहा है। जब मैं कह रहा हूं आपके सामने कि आलम तालीम देता है, ये जितनी भी हवादिस मुअल्लिम इंसान है, यानी ये हवादिस इंसान के लिए रसूल हैं खुदा की जानिब से, सही। बस हम इन रसूल को एक्सेप्ट करें अपने वजूद के अंदर और इन रसूल के पैगामात को दरियाफ्त कर सकें, ठीक है, सही। अब यहां पर एक और तरबियती नुक्ता है, ठीक है, वो तरबियती नुक्ता क्या है जो कि बहुत मुहिम है, मैं आयतुल्ला बेहजत रहमतुल्ला अलैह की इस जुमले से ये नया नुक्ता शुरू करूंगा, वो ये है कि फिर हम आएंगे काबिल के ऊपर। अब इसके बाद आप देखें काबिल ने किया क्या है। आयतुल्ला बेहजत रहमतुल्ला अलैह फरमाते हैं कि कोशिश करो कि गुनाह ना करो। सबसे पहली कोशिश क्या होनी चाहिए कि इंसान गुनाह ना करे। अगर गुनाह हो भी जाए, कोशिश करो वो गुनाह फर्दी हो, इज्तिमाई ना हो, माशरती गुनाह ना हो। कोशिश करो इस के माशरती गुनाह में अपने आप को मुब्तला ना करो। अगर अब ये देखे, अब फरमाते अगर खुदा ना खासा माशरती गुनाह हो भी जाए तुमसे, तो कोशिश करो वो गुनाह एक खास जमाने से मरबूत हो, एक खास मकान से मरबूत हो और उस खास जमान और मकान तक महदूद हो। क्या मतलब? मतलब ये है कि देखें, इंसान जब इस दुनिया से चला जाता है, तो इंसान तो इस दुनिया से चला गया, कब्र में गया और वहां से उसकी बॉडी चिकना चूर हो गई, सही है, लेकिन इंसान के आमाल अब भी इस दुनिया से नहीं जाते। गौर से सुने, इंसान इस दुनिया से चला जाता है लेकिन उसके आमाल की फाइल अब भी खुली हुई है, उसके नामाए अगरचे वो आलम बरजख में है इस वक्त, ठीक है, या आलम बरजख के बाद जो है दीगर मराहिल वो तय कर रहा होगा, लेकिन फिर भी उसके नामाए आमाल में जदीद आमाल लिखे जा रहे हैं। क्यों, कैसे, इज दिस पॉसिबल? बिल्कुल ये पॉसिबल है, सही है। अब चाहे वो आमाल बुरे आमाल उसके नामा आमाल में लेके जा रहे हो, चाहे वो अच्छे और नेक आमाल हसना आमाल हो। यहां पर एक टॉपिक जो दीन ने जिसकी तरफ इशारा किया है और बहुत ही वाजे जो है वो हमें मिलता है खास तौर पर काबिल की इस कहानी में, वो है सुन्नत गुजारी। ओके, सुन्नत गुजारी, ठीक है। अब सुन्नत गुजारी क्या है? देखिए, इंसान जब, अब ये रिवायात में भी मौजूद है, ठीक है, तालीमाते दीन में हमें ये मिलता है कि जब इंसान कयामत में देखेगा अपने हिसाब व किताब को, हत्ता मुमकिन है बरजख में भी ये पॉसिबल हो, देखिए बरजख में भी हिसाब व किताब है, कयामत में भी हिसाब व किताब है, हिसाब व किताब के मुख्तलिफ मवाकिफ हैं, मुख्तलिफ जो है स्टेशन हैं, उसमें से एक बरजख भी है। बरजख में भी जन्नत और जहन्नम है, आखिरत और कयामत में भी जन्नत और जहन्नम है, मुख्तलिफ जन्नत और जहन्नम मौजूद है इंसान के लिए, आमादा एंड रेडी। अच्छा, अब रिवायात में हमें यह मिलता है कि जब इंसान अपना नामा आमाल उसको दिखाया जाएगा, तो वो देखेगा, ओ माय गॉड, मेरे नामा आमाल में इतने सारे कत्ल लिखे हुए हैं। वो उस फरिश्ते को कहेगा कि भाई, मैंने तो ये कत्ल अंजाम नहीं दिए, सही है, मैं तो हत्ता छोटे छोटे हैवानात से और हशरे से जो है मैं डरता हूं, चे जाए कि मैं किसी का कत्ल करूं मैं। तो यहां पर उससे खिताब किया जाएगा, वो खिताब ये किया जाएगा कि भाई, ए इंसान, तुम एक दफा उस मीटिंग में मौजूद थे, उस मीटिंग में बहुत सारे फैसले किए जा रहे थे, उन फैसलों के नतीजे में तुम खामोश रहे, या तुमने स्माइल किया, मुस्कुराए तुम, कि उस मुस्कुराने से या तुम्हारी उस खामोशी से फैसला ये लिया गया कि फला बंदे का जो है फला हशर करना है, फला बंदे का फला कत्ल करना है, सही है। तो ये इंसान को कहा जाएगा, यानी इंसान एक मीटिंग में मौजूद है। मैं ये हमारे साथ होता है रोजमर्रा, ये डेली बेसिस पे ये वाकयात हमारे साथ पेश आते हैं, ठीक है। इसको हम कहते हैं लवाजे में काम, यानी बहुत सारे काम मैं और आप अंजाम देते हैं। मैंने आपके सामने एक बात की, ठीक है, या मैं आपके सामने खामोश रहा, इस खामोशी से बहुत सारे लोग मुख्तलिफ नताइज निकाल रहे हैं। सही है, आप यूं समझे कि मिसाल के तौर पर कोई मीटिंग हो रही है उलमा की, या मुख्तलिफ लीडर्स की मीटिंग हो रही है किसी खास मसले के ऊपर, ठीक है, और उसमें से 5 या 6 बड़ी शख्सियात जो है वो खामोश है या मुस्कुरा रही है, और नतीजे में एक फैसला तस्वीब होता है, एक्सेप्ट होता है, और खुदा ना खासा एक मनफी हादसा पेश आता है उस फैसले के नतीजे में, होगा ये कि उस हादसे का जो अमल तय पाया है उन खामोश शख्सियात के नामा आमाल में भी लिखा जाएगा। बस इंसान जब कयामत में वारिद होगा, बरसख में जाएगा, तो उसके नामा आमाल में बहुत सारे कत्ल लिखे होंगे। सही है, आप देखेंगे खवातीन के दरमियान ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम पेश आते हैं। मसलन नॉट ओनली खवातीन, मर्द हजरात भी ऐसे हैं, ठीक है, कि मसलन 5-6 लोग बैठे हुए हैं, सही है, गपशप हो रही है, गपशप में कितनी लोगों की गीबतें हो रही है, गीबत के नतीजे में एक शख्स के अंदर जो उस महफिल में बैठा हुआ है उसके अंदर उस शख्स की जानिब जिसकी गीबत हो रही है एक तनफ्फुर, एक नफरत, एक हेट्रेड ईजाद हो रही है, ठीक है। खुदा ना खास्ता उस हेट्रेड के ईजाद होने में जो उस शख्स के दिल में ईजाद हुई है वो बाद में कोई इकदाम करे उस शख्स की तरफ, उस शख्स की निस्बत जिसकी गीबत हो रही है, नतीजे में वो अमल इन तमाम गीबत कुनंदगान, गीबत करने वालों के आमाल में लिखा जाएगा। सही है, ये सुन्नत गुजारी की एक मैंने आपको मिसाल दी, ठीक है, लेकिन ये हदीस आप देखें, मन सन्न सुन्नतन हसनतन फलहू अजरुहा व अजरु मन अमिल बिहा मिन गैरी अन यन्तकिसा मिन उजूरहिम शय। देखिए बिहारुल अनवार की हदीस थी, यहां पर एक कानून तकवीनी है, तकवीनी कानून, यानी खुदा ने इस कायनात के अंदर, इस निजाम हस्ती के अंदर ये कानून सेट किया हुआ है। सही, अब वो कानून जो है वो अमले हसना की से मजबूत भी है, अमले सैया कोई भी अमल हो, मिसाल के तौर पर अगर उस्ताद ने, एक डॉक्टर है, ठीक है, उसने 5 स्टूडेंट्स की तरबियत की है और 5 स्टूडेंट्स को उसे डॉक्टर बनाया है, ठीक है, होता क्या है जब वो 5 स्टूडेंट्स मुख्तलिफ हॉस्पिटल्स में काम कर रहे हैं और ये मुख्तलिफ पेशेंट्स के मसाइल को हल कर रहे हैं, मसलन इन 5 डॉक्टर्स ने 5 मुख्तलिफ जानें बचाई हैं, सही है, नतीजे में वो अमल जो इन 5 डॉक्टर्स ने अंजाम दिया है, 5 मुख्तलिफ जानें बचाई हैं, इस उस्ताद के नामे अमल में भी लिखा जाएगा। सारा जो आप कहते हैं ना सारा क्रेडिट तो उसको जा रहा है, सही है, ये हकीकत है, सारा क्रेडिट, सारा सवाब, सारा अजर इस उस्ताद को जाएगा जिसने इन 5 डॉक्टर्स की तरबियत की है। देखिए ये सुन्नत गुजारी की एक मिसाल है। खूब मुमकिन है, अब ये बात यहां पर देखें, यहां से इंसान क्या होता है, अब वो डॉक्टर दुनिया से चला गया लेकिन ये 5 डॉक्टर जो उसके शागिर्द हैं ये माशाल्लाह महीने में कितनी जानें बचाते हैं। अब ये डॉक्टर जो आलम बरजख में है या आलम आखिरत में है, मुसलसल इसके नामा आमाल में जदीद आमाल लिखे जा रहे हैं। सही है, इसको कहते हैं सुन्नत गुजारी, अच्छे काम की सुन्नत गुजारी। बस इससे हमें पता चलता है कि इंसान बेशक इस दुनिया से चला जाए लेकिन इंसान के आमाल और उसका वजूद फरा जमानी है, जमान से बालतर है, मकान से बालतर है, इंसान फकत एक खास जमान और मकान तक महदूद नहीं रहेगा। सही है, तो देखिए खुदावंद मुताल ने सुन्नत का ये बाब किस कदर अपने लुत्फ और इनायत से हमें नवाजा है, आप देखें, और मैं और आप किस कदर इस चीज से गाफिल हो जाते हैं। मुमकिन है मैं और आप अपने जिंदगी के मुख्तलिफ फेजेस में ये सुन्नत गुजारी करते हो लेकिन हम इस चीज से गाफिल हैं। सही, अब देखिए जो छोटे छोटे, अब तो सोशल मीडिया पे इस कदर छोटे छोटे क्राइम्स होते हैं, सही है, अखलाकी क्राइम्स होते हैं, और पता नहीं क्या क्या होता है, किस कदर बुरी सुन्नत गुजारी होती है सोशल मीडिया के अंदर, ये खुदा ही जाने। ठीक है, इंसान जब कयामत में जाएगा तो एक खास उसका फाइल केस होगा, फोल्डर होगा, उसके ऊपर लिखा होगा सोशल मीडिया में सुन्नत गुजारी। सही। अब देखें, अब मुझे और आपको इस सुन्नत गुजारी की बहस के बाद अब थोड़ा होशियारी से काम लेना चाहिए, अपने आमाल को कंट्रोल करना चाहिए मुझे और आपको। खुदा, अब देखें किस कदर तरबियती मसाइल पेश आते हैं। सही, मसलन बाप ने बेटे को सुना दी, बाप ने बेटे को थप्पड़ लगा दिया। सही है, बाप को नहीं पता कि इस अमल का उसको क्या नतीजा भुगतना होगा आगे जाकर। हम ये नहीं समझे कि अगर कोई बुरा सलूक एक बच्चे के साथ किया है तो ये रायगान जाएगा, नहीं, इसका जवाब खूब देना होगा, खूब जवाब देना होगा। सही, काबिल ने उस कत्ल के बाद एक सुन्नत गुजारी अजीम अंजाम दी। काबिल के बाद इस दुनिया में जब तक कयामत बरपा नहीं होती, जितनी भी कत्ल अंजाम पाएंगे सब के सब काबिल के नामा आमाल में लिखे जाएंगे। इसी वजह से हदीस में हमें ये मिलता है कि तारीख दुनिया में यानी कयामत तक, ठीक है, 7 मलऊन हैं जो ता कयामत मलऊन रहेंगे। 7 मलऊन हैं जो ता अबद मलऊन शुमार होंगे। वो 7 में से ये लोग हैं, एक काबिल सबसे पहले, दो वो शख्स जिसने दीन मूसा अलैहिस्सलाम में तहरीफ की, 3 वो शख्स जिसने दीन ईसा अलैहिस्सलाम में तहरीफ की, 4 नमरूद जो हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के खिलाफ मुकाबले में खड़ा हुआ, 5 फिरौन, नबी खत्मी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत में से वो शख्स जिसने नबी खत्मी के दीन को तहरीफ किया, और 7वां भी एक और शख्स है कि जिसने दीन खत्मी में तहरीफ का अमल अंजाम दिया। सही है, अब रिवायात में ये शायद नाम नहीं आया, आई थिंक सो कुल्ली तौर पे कहा गया ये जो 6 और 7 आखिरी दो मौलिद हैं, ठीक है, लेकिन ये 7 मलऊन अबदी हैं, लाने अबदी का शिकार हैं, जहन्नम के वो निचले और तह के अंदर ये लोग मौजूद हैं, उस आखिरी दर्जात के अंदर, जहन्नम के अंदर इनको सजा दी जा रही है। बस देखें, अब यहां पर सवाल ये होना चाहिए कि सुन्नत गुजारी करना आसान है या मुश्किल है। मुश्किल काम नहीं है सुन्नत गुजारी, सुन्नत गुजारी बहुत ही आसान काम है। सही, इंसान एक लहजे में एक सुन्नत गुजारी करता है, कर सकता है। मसलन एक मिसाल दूं, घर के अंदर एक माँ है मिसाल के तौर पर, वो जब खाने में सब बैठते हैं तो माँ बुलंद आवाज से कहती है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, मुसलसल ये काम करती है। देखिए बाज माओं का क्या तरीका होता है, सही है, डाइनिंग पे बैठते हैं, बच्चों को कहते हैं, बाप भी ऐसे होते हैं, ठीक है, वो जब बहुत ज्यादा दीन के, खुद ज्यादा दीनदार नहीं होता ऐसे माँ बाप, लेकिन चाहते कि अपने बच्चों को दीनदार बनाए, ये कभी भी नहीं हो सकता, ये पॉसिबल नहीं है। आपके बच्चे कभी भी दीनदार नहीं बनेंगे जब तक आप खुद दीनदार ना बन जाएं, जब तक आप खुद दीन का अमली नमूना ना बन जाएं अपनी फैमिली के अंदर। अब बहुत सारे माँ बाप जो बहुत ज्यादा सेंसिटिव होते हैं, खुद ज्यादा अमल नहीं करते दीन के ऊपर, लेकिन चाहते अपने बच्चों पर ज्यादा दीन को थोपें, वो जब डाइनिंग पे बैठेंगे तो क्या कहेंगे, बिस्मिल्लाह पढ़ा तुमने, बिस्मिल्लाह पढ़ो, चलो देखें ये तरीकेकार, ये सही नहीं, सही नहीं है ये, वो बच्चा कभी भी बिस्मिल्लाह नहीं पढ़ेगा आपकी इस तरीकेकार से। लेकिन एक तरीकेकार है, वो क्या तरीकेकार है, वो दीन ये कहता है, दीन कहता है कि पहले 7 साल में बच्चों की तरबियत करो इनडायरेक्टली, इनडायरेक्ट तरीके से। मसलन माँ बैठी हुई है डाइनिंग पे, सब बाप भी है, बच्चे भी हैं, 2 साल के बच्चे, 4 साल के बच्चे बैठे हुए हैं, माँ भी और बाप भी जब डाइनिंग पे बैठे हैं बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम और फिर अपना खाना शुरू, नहीं कहते बच्चों को तुम भी पढ़ो, लेकिन जब बच्चा इस अमल को रोजाना देखेगा तो अब वो भी ऑटोमेटिकली अब जब बैठेगा डाइनिंग पे तो वो भी कहना शुरू हो जाएगा। और अब देखें ये माँ बाप ने एक सुन्नत गुजारी की है, अब जब ये बच्चा बड़ा होगा, ये जब अपने बच्चों के साथ ये सुन्नत गुजारी बजा लाएगा, अब आप देखें ये नस्ल अंदर नस्ल अंदर नस्ल अगर ये काम होता गया तो इस सुन्नत का ईजाद करने वाला कौन था? ये असल माँ बाप थे। नतीजे में वो 10 नस्लों बाद भी जब वो बिस्मिल्लाह की सुन्नत पर अमल किया जाएगा तो नतीजे में इन अजदाद की नामाए आमाल में लिखा जाएगा। ये सुन्नत गुजारी का कमाल है। देखिए हम किस कदर गाफिल हो रहे हैं इन चीजों से। आए हम गाफिल नहीं है। मसलन एक और मिसाल दूं, देखिए इस वक्त पाकिस्तान में एक बहुत बड़ी कमी, सही है, खास समय में शिया कम्युनिटी की बात करूं, ठीक है, वो ये है कि शिया कम्युनिटी के अंदर एक चीज का बहुत बड़ा फिकदान है, और जो मुतदयिन ग्रुप्स हैं, चाहे वो मदारिस हों, चाहे वो मुख्तलिफ इंस्टीट्यूट्स हों, जिनका वाकई में एक खालिस हदफ है कि लोगों को दीनदार बनाए, ठीक है, लेकिन वो एक चीज से गाफिल है, वो इस चीज पर असल काम ही नहीं कर रहे जो कि बुनियाद है, ठीक है। वो क्या है? बुक रीडिंग, किताब खानी, सही है, किताब खानी, सही है। आप मुझे बताएं इस वक्त पाकिस्तान में शिया कम्युनिटी किस कदर बुक रीडिंग करती है? बहुत कम, बहुत कम, 1%, 2%, उससे ज्यादा नहीं, शायद 1% भी ज्यादा हो, सही है। अगर कोई शख्स आए, फॉर एग्जाम्पल एक छोटी सी मिसाल देता हूं, ठीक है, अपने मोहल्ले के अंदर एक शॉप बनाता है, उस शॉप का नाम कैफे होता है और बुक रीडिंग कैफे, सही है, बुक रीडिंग कैफे, उसमें रिलीजियस बुक्स भी हैं, नॉन रिलीजियस बुक्स भी हैं, ठीक है, नतीजे में यूथ्स आते हैं उस कैफे में, चाय भी पीते हैं, सैंडविच भी खाते हैं, बुक्स भी मेंबरशिप की बुनियाद पर लेते हैं और अमानत के तौर पर लेते हैं, फिर वापस लौट आते हैं। आहिस्ता आहिस्ता ऐसा ये बुक रीडिंग कैफेज में इजाफा होता है इस मोहल्ले के अंदर, मुख्तलिफ मोहल्लों के अंदर, मुख्तलिफ लोकेशंस के अंदर। नतीजे में 10 साल बाद आप देखें, या मैं 10 साल नहीं 20 साल बाद आप देखें, वो पूरी सोसाइटी, वो पूरा मोहल्ला किताब खान बन चुका है, बुक रीडर बन चुका है। ये होती है सुन्नत गुजारी। नतीजे में जिस पहले शख्स ने जिस इस अमल को अंजाम दिया सुन्नत बुक रीडिंग का, आने वाले जितने भी बुक रीडर्स होंगे उन तमाम के आमाल जो है वो इस शख्स के नामे अमल में लिखा जाएगा, बुक रीडिंग का जो अमल है। देखिए बहुत सारे छोटे छोटे काम हम कर सकते हैं, शायद हम गाफिल हैं। जरूरी नहीं कोई अमल बम, देखिए हम जब इन चीजों के बारे में सोचते हैं यार कोई बड़ा काम करना चाहिए, भाई बड़ा काम नहीं करें आप, ये छोटे छोटे काम करें आप, छोटे छोटे काम की सुन्नत गुजारी शुरू करें। अलबत्ता काबिल ने जो सुन्नत गुजारी की वो आपके सामने थी, ठीक है। अब यहां पर आते हैं आदम अलैहिस्सलाम के ऊपर दोबारा, देखें हाबील अलैहिस्सलाम अला नबी ना वाली व अलैहि सलाम, हम सलाम पेश करते हैं आदम अलैहिस्सलाम पर भी, हाबील पर भी, और हजरत हव्वा सलामुल्लाह अलैहा, हम सब आए इन पर सलाम पेश करें, हम अपने तवस्सुलात में इनको ना भूलें। अगर हम अइम्मा अलैहिस्सलाम से तवस्सुल करते हैं, इनसे भी तवस्सुल करें, ये अंबिया हैं, ये हमारे असल बाप हैं। हाबील के कत्ल के बाद क्या हुआ? अब हाबील के कत्ल के बाद आदम अलैहिस्सलाम ने 40 दिन गिरिया किया, 40 दिन और रात, ऐसा नहीं 40 दिन, नहीं 40 दिन और रात, 24 आवर्स आदम अलैहिस्सलाम ने गिरिया किया। अलबत्ता ये जो गिरिया है आदम अलैहिस्सलाम का, ये फकत एक बाप का अपने बेटे के फिकदान में गिरिया नहीं था, बल्कि वली के फिकदान में था ये गिरिया। क्यों? क्योंकि हाबील अलैहिस्सलाम को खुदावन की जानिब से आदम अलैहिस्सलाम के बाद वली बनाया गया था, वसी बनाया गया था। जिस तरह याकूब अलैहिस्सलाम ने यूसुफ अलैहिस्सलाम के ऊपर जो गिरिया किया वो फकत बेटे के फिकदान में गिरिया नहीं किया था, बल्कि वली के फिकदान में गिरिया किया था। यहां पर भी आदम अलैहिस्सलाम ने वलीउल्लाह यानी हाबील के फिकदान में 40 दिन और रात, 24 घंटे गिरिया किया। और इन 40 दिन और रात में से हमें यह मिलता है कि 3 दिन और रात मुसलसल सजदे में मशगूल थे, सजदे में मुसलसल 3 दिन और रात। अब आप देखें किस कदर आदम अलैहिस्सलाम को ये गम है। यहां पर खुदावंद मुतआल ने हजरत आदम को बिशारत दी कि ए आदम, मैं तुझे एक और फर्जंद अता करता हूँ और उस फर्जंद का नाम है हिबतुल्लाह। हिबतुल्लाह यानी खुदा की तरफ से बख्शिश, खुदा की तरफ से एक हिबा, एक हिदिया, ठीक है। और जब वो दुनिया में आए तो हजरत आदम ने उनका नाम रखा शैस, हजरत शैस अलैहिस्सलाम, जो कि हजरत आदम के बाद उनके वसी बने, ठीक है। और आदम अब यहां पर जब हम देखेंगे बाद में, मैं आऊंगा कि टाइमलाइन के दरबार से कि ये कौन से टाइम में पैदा हुए। हजरत आदम की उस वक्त उम्र क्या थी, ठीक है, कि जब हजरत शैस वजूद में आए, मुतवल्लिद हुए। जब शैस दुनिया में आए, बड़े हो गए, तो आदम अलैहिस्सलाम ने एक दिन शैस से कहा कि मैं जन्नत को कभी नहीं भूल सकता। सही है, अगर आपने या जो न्यू लिसनर्स हैं इन सेशंस के, जिन्होंने पहले के सेशन सुने हो, हमने बयान किया था कि किस तरह आदम अलैहिस्सलाम को जन्नत से निकाल देने के बाद, निकाल जाने के बाद, किस कदर उनको वो गमगीनी की हालत तारी हुई उस फिरा के जन्नत की वजह से। यहां पर आदम अलैहिस्सलाम शैस अलैहिस्सलाम से फरमाते हैं कि मैं जन्नत को कभी नहीं भूल सकता, जाओ मेरे लिए जन्नत से एक सेब लेकर आओ, जन्नती सेब लेकर आओ। अब शैस ने अपने वालिद के और अपने नबी के हुक्म पर अमल किया। अब जब उन्होंने हरकत की, ठीक है, तो वहां पर रास्ते में जिब्राईल अलैहिस्सलाम मिलते हैं और दीगर मलाइका भी होते हैं। अलबत्त उलमा फरमाते हैं ये जो जबान है ना, कि मतलब शैस ने हरकत की, रास्ते में जिब्राईल मिले, ये एक तमसीली जबान है, ठीक है। ये वाकया पेश आया है, लेकिन ना उस तरह से जिस तरह या ये अहादीस के अल्फाज हैं। सही, ये सब हमें रिवायात के अंदर ही मिलता है। तो जिब्राईल अलैहिस्सलाम शैस अलैहिस्सलाम को पूछते हैं कि कहाँ जा रहे हो, तो शैस ने कहा कि मैं आदम की वसीयत पर अमल करने जा रहा हूँ, उन्होंने मुझे कहा कि तुम जन्नत से सेब लेकर आओ, तो मैं जन्नत से सेब लेने जा रहा हूँ। तो जिब्राईल ने कहा नहीं, अब तुम वापस लौट जाओ, क्योंकि आदम की रूह की तवफी हो चुकी है, आदम इस दुनिया से जा चुके हैं। अब जिब्राईल अलैहिस्सलाम बाकी तमाम मलाइका समेत जमीन पर आते हैं और आदम के जसद के लिए तैयारी करते हैं, तशी जनाजे के लिए तैयारी करते हैं। और अब यहां पर वो मौका होता है कि हम आदम अलैहिस्सलाम की 730 साल जिंदगी, जो हमेशा रिवायत में मिलती है, 730 साल जिंदगी का इख्तिताम हमें यहाँ पर मिलता है। अब लास्ट सेशन हमारा कल होगा, टुमारो विल बी आवर लास्ट सेशन, और देखेंगे कि आदम अलैहिस्सलाम, हव्वा अलैहिस्सलाम का क्या हुआ, उन्होंने आदम के बाद कितना टाइम गुजारा, और कुछ नुकात हम देखेंगे, वसीयत है आदम अलैहिस्सलाम की क्या वसीयत थी, और शैस के साथ फिर क्या हुआ, काबिल का क्या बना इन दी एंड। सही, बहुत सारी बातें बाकी हैं। इंशाल्लाह हम कल के आखिरी सेशन में, जो हमारा 25th सेशन होगा, 25th ऑफ माह रमजान के एतबार से, इंशाल्लाह मुंतजर रहेंगे। इंशाल्लाह वस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।
صل على محمد.